धन्यवाद बहनों का। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उस कला, उस आर्ट को समझने के लिए कि हम स्ट्रेस फ्री कैसे जी सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि स्ट्रेस कब से शुरू हुआ होगा, ये शब्द कब से आया होगा? तो जब से हम प्रकृति या भगवान के रूल्स को वायलेट करना चालू किया, तब से हमारे जीवन में ये स्ट्रेस आना शुरू हुआ है। कई समझते हैं कि जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रहना अच्छा है, परंतु हमें ये क्लियर होना चाहिए कि तीन टर्म्स हैं, एक है प्रेशर, एक है टेंशन और एक है स्ट्रेस। तो थोड़ा प्रेशर जब होता है तो कई बार अनुभव होता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो टाइम बाउंडेड होता है कि इस टाइम के अंदर ये कार्य को पूरा करना है, तो उसका एक प्रेशर होता है, तो फील होता है कि एक एफिशिएंसी बढ़ रही है। टेंशन इससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल है या शरीर के लिए हानिकारक है, यूं कह सकते हैं। टेंशन को समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई टाइम फिक्स है कि इतना बजे इंटरव्यू के लिए जाना है जॉब के लिए, और आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, तो जो मन में संकल्प चलना शुरू होता है, अब क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, पता नहीं कैसे पहुंच पाएंगे, तो जो एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है तो हम टेंशन का अनुभव करते हैं। पर जब ये एनर्जी फ्लक्चुएशन लंबे समय तक होने लगता है या कंटिन्यूएशन में रहने लगता है तो ये शरीर पे असर डालने लगता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस एक प्रकार से एक डिजीज है, अदरवाइज हर एक स्ट्रेस में रहना पसंद करते, स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस फ्री लिविंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जैसे कि आप गीत भी सुन रहे थे कि जीवन का ये खेल हंसते हंसते पार करना है। एक बार एक भाई थे, हमेशा हंसते ही रहते थे, तो हम पूछते थे कि कोई विपरीत परिस्थिति आती तो भी आप हंसते ही रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि लाइफ में दो ही चॉइस है, या तो आप हंस के जिए या फिर आप रो के जिए। तो मैंने अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग कर ली है कि मुझे हंस के ही जीना है, इसलिए मैं सदा मुस्कुरा पाता हूं। तो आपके पास भी दो चॉइस है, या तो आप टेंशन में जिए, क्योंकि आज की कंपटीशन वाली दुनिया में हर एक को स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रेस के लिए कहा गया है फ्रॉम उम्ब टू टूम, गर्भ से लेकर कब्र तक। जर्मनी में तो कब्र के लिए भी जमीनें नहीं मिलती, तो गर्भ से लेकर कब्र तक हर एक को स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। तो आपके पास भी दो चॉइस है, या तो आप स्ट्रेस में जिए या आप स्ट्रेस फ्री जीवन जिए। कौन सा जीवन जीना चाहेंगे आप? स्ट्रेस फ्री, हाथ उठाएंगे एक बार जो स्ट्रेस फ्री जीवन जीना चाहते हैं, या फिर कई लोगों को इच्छा होती है कि स्ट्रेस के साथ ही जिए। थैंक यू, इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं। तो वो स्ट्रेस फ्री लिविंग के बारे में टिप्स बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। आप प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं, आपने डिप्लोमा और डिग्री दोनों साइकेट्रिस्ट में किया हुआ है, आप कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं जो 30 साल से इस क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकेट्री के प्रेसिडेंट हैं, आप पहले इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन के और दिल्ली साइकेट्रिक सोसाइटी के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है माइंड्स विजन करके, जो मीडिया अवेयरनेस का काम करती है, उसके आप फाउंडर हैं। आप ब्रह्मा कुमारी से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी के जो डिफरेंट विंग्स हैं, जैसे ये एक मीडिया विंग की तरफ से आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, वैसे इसके 17 विंग्स हैं। तो डिफरेंट विंग्स से आप एसोसिएटेड हैं। ब्रह्मा कुमारी जो कि एक ग्लोबल एनजीओ संस्था है, आपने परिचय इसका प्राप्त किया है, और आपने 200 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में अपने व्यूज रखे हैं। जिस कॉन्फ्रेंसेस में टॉपिक्स रही है soul, mind, body, medicine and meditation. आपने ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर से मेडिटेशन भी सीखा हुआ है, लगभग 10 डिफरेंट स्कूल से आपने 1000 से भी ज्यादा वक्तव्य रखे हुए हैं जनरल पब्लिक के लिए, जो कि भारत में और भारत से बाहर भी स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती है. ऐसे जो भी प्रोग्राम्स हुए उसमें आपने 1000 से भी ज्यादा अपने वक्तव्य रखे हुए हैं. आप बहुत अच्छे एंकर भी हैं. टेलीविजन में आपका एक प्रोग्राम चलता था माइंड वॉच, जो कि रियल स्टोरीज पे चलता था, सत्य घटनाओं पे आधारित, बहुत लंबा. 86 से आप एंकरिंग का काम कर रहे हैं, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग नॉन फिक्शन प्रोग्राम था माइंड वॉच, जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर ये कार्यक्रम चला. और भी जो दूसरे सीरियल्स में आपने डायरेक्टर भी एज ए डायरेक्टर भी काम किया और एंकरिंग का भी काम किया है, वो है मन की बात. ये भी 78 इसके सीरियल्स बने हैं. और इस मन की बात में जिन मुद्दों को उठाया गया है, जैसे ड्रग एब्यूज के ऊपर, वो है अंधी गलियां, माइंड योर माइंड, मेंटल इलनेस के ऊपर, खामोश शत्रु एड्स के ऊपर, आजादी की ओर, बेटर हाफ्स, आयुष्मान भव, हेल्दी लिविंग के ऊपर, और बॉडी माइंड सोल जिसको कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ, इन टॉपिक्स के ऊपर मन की बात नाम का जो सीरियल चला है उसमें आपने एंकरिंग भी किया है और आप उसके डायरेक्टर भी रहे हुए हैं. और नेशनल रेडियो ऑफ इंडिया में भी आपने 100 से भी ज्यादा अपने व्यूज रखे हैं. आप अच्छे लेखक भी हैं. आपने 20 के लगभग किताबें लिखी हैं जो तनाव मुक्ति के ऊपर हैं, डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस, अलविदा तनाव और स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर. आपके इस विद्वता के लिए, इन सब कार्य के लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि जेम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति अवार्ड. आप इंडो अमेरिकन हुज हू में भी लिस्टेड हैं. और जो एशिया के मेन एंड वोमेन्स ऑफ अचीवमेंट की जो लिस्ट होती है उसमें भी आपका नाम रेफर किया गया है. तो ऐसे एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट से आज हम स्ट्रेस फ्री लिविंग के बारे में जानेंगे, वो टिप्स कि कैसे हम तनाव रहित जीवन को जी सकते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर अवधेश शर्मा जी से.
पिछले 2-2.5 दिन से मैं देख रहा था जो प्रोग्राम चल रहा है कि कैसे हम एक स्वर्णिम युग को ला सकेंगे. यहां पे कितने लोग पहली बार आए हैं? ओके. देखिए, जब यहां पे पहली बार आते हैं तो आने के बाद धीरे धीरे इस जगह का जादू सा चढ़ना शुरू हो जाता. जहां जा रहे हैं लोग स्माइल कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बातचीत हो रही है, कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है. कौन चला रहा है यह पता नहीं लगता. आपस में किसी को एक दूसरे के साथ डांटते भिड़ते नहीं देखा. नीचे जाएंगे, जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे तो वहां पे ये सब देखना शुरू हो जाएगा. ट्रेन में बैठेंगे तो मारामारी थोड़ी सी और शुरू हो जाएगी. वापस अपने घर पहुंचेंगे तो स्टेशन से उतरते ही ऑटो ड्राइवर या बस जैसे भी जाएंगे उनमें चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा. घर पहुंचेंगे, काम पे पहुंचेंगे, बैक टू स्क्वेयर वन. ये एक एक्सपीरियंस है जो ज्यादातर लोगों का रहा है. और फिर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम यहां पे आए, थोड़ी सी बैटरी चार्ज करें और फिर वापस जाएं. लेकिन ये बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो बहुत कष्ट देती है. मैंने करीबन 20 साल से इन चीजों को पर्सनली देखा है एक्सपीरियंस किया है। आज जो बात करेंगे वो साइंटिफिक बातें करेंगे। सुबह आपने गीता दीदी को सुना, आने वाले दिनों में भी सुनेंगे, उससे पहले बहुत सारे वक्ताओं को सुना होगा। कई बार ऐसे लगता है कि साइंस फिक्शन की जैसे पिक्चर चल रही है ना, स्टार वॉर्स, उस तरह की बातें हैं कि ये तो साहब यहां पर ही होता है और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सत्यता यह है कि जब तक हम इस जीवन को अपने नॉर्मल जीवन का हिस्सा ना बना लें, तो ये थोड़ा 3-4 दिन का एक्सपीरियंस है। जैसे सपना होता है ना, बहुत अच्छा सपना आता है, उस समय बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठते हैं आंख खुलती है और उसके बाद बैक टू बिजनेस। कैसे हम तनाव मुक्त जीवन को अपना नेचुरल जीवन बना लें, क्या ये पॉसिबल है, और क्या ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम रोड ब्लॉक्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन तनाव मुक्त नहीं रह पाता। अगले करीबन 1 घंटे में इस चीज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद 15-20 मिनट छोटी मोटी डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, और सेशन के बाद में ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम यहां पे कितने लोग जर्नलिस्ट हैं और कितने जर्नलिस्ट के घर वाले हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट अबाउट 3/4, करीबन 70-75% हम लोग, और मैं भी अपने आप को एक जर्नलिस्ट समझता हूं, क्योंकि एक्चुअली मेरा कैरियर मेडिसिन में बाद में शुरू हुआ, जर्नलिज्म में पहले शुरू हुआ। MBBS करते वक्त मैंने टेलीविजन करना शुरू किया और अब ये दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं। जर्नलिस्ट जो है वो एक तरह से स्पेशल कैटेगरी है, क्योंकि वो सारे समाज की खबर रखते हैं, लेकिन यहां पे हम समाज की नहीं, हम अपनी अंदर की खबर की बात करने वाले हैं। तो हमारे क्या ऐसे तनाव हैं जिनकी वजह से हम तनाव रहित नहीं हो पाते, ये हमारा कच्चा चिट्ठा है। ब्रेकिंग न्यूज, हर समय कोई ना कोई न्यूज जब हम दूसरों को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में देने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे पहले मेरे अंदर ब्रेकिंग न्यूज बन के आती है, क्योंकि उसे हमने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता, TRP बनानी होती है, न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी खबर जो कि आंखों में लगे और व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो। और इस चीज के लिए हमेशा डेडलाइंस होती हैं। मेरे फ्रेंड्स भी जब कई बार पेपर से बात करते हैं और कहते हैं डॉक्टर शर्मा अभी के अभी ये बाइट चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में मुझे स्टोरी देनी है, या टेलीविजन पे या रेडियो पे इस समय एक्चुअल खबर लाइव चल रही है, उसके लिए कुछ करना। और ये प्रोसेस कभी कभार नहीं, ये 24/7 चलता, हर समय दिन रात, क्योंकि खबर एक ऐसी चीज है या मीडिया एक ऐसी चीज है जो हर क्षण बदल रहा, समाज के हिसाब से बदल रहा। कई बार हम उस तनाव में रहते हुए समाज का हिस्सा बन जाते हैं और कई बार हम खुद समाज को तनाव देने का हिस्सा बन जाते हैं, ये एक सच्चाई है। इस ग्रुप में पत्रकार मित्रों से खड़े होकर ये बात मैं जरूर कह सकता हूं, किस तरह से हम न्यूज को फिल्टर करें ताकि जो हमसे समाज में जाए वो जाने वाली चीज लोगों को सांत्वना दे, डराए नहीं। लेकिन उसके लिए हमें एक चीज को भूलना पड़ेगा, कंपटीशन। आज के समय में 700 से अधिक चैनल्स हैं जो टेलीविजन पे हैं, कम्युनिटी रेडियोज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वर्नैकुलर्स हैं, नेशनल हैं, तो हर समय दूसरी चैनल क्या कर रही है, दूसरा पेपर क्या कर रहा है, उनकी क्या खबर हो रही है, कैसे मेरी उनसे बेटर हो ताकि मेरी TRP बढ़े या मेरा पेपर ज्यादा बिके, वगैरह वगैरह। तो अगर उसी चीज की हर समय मन में चाहत होती है तो जो काम हम कर रहे हैं उसको और बेहतर करने के साथ साथ हमेशा एक मन में चलता है कि किस तरह से मैं दूसरे से होड़ में लगा रहा हूं, और वो जो होड़ है वो कंपटीशन है, वो तनाव का एक सबसे बड़ा कारण है। उसी के साथ साथ हम जिस भी जगह पर काम करते हैं, चाहे हम पब्लिक में जाएं, चाहे कहीं पे दंगे हो रहे हैं वहां पे जाएं, चाहे कहीं बीमारी फैल रही है उसके लिए जाएं, या क्रिमिनल से बात करें, या कोई भी और स्टोरी दें, जिन लोगों से मीडिया बात करता है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। डॉक्टर, मीडिया और पुलिस वाले सिर्फ परेशानियों से डील करते हैं, नॉर्मल इंसान उनके पास आता नहीं है। तो हम हर समय समाज का वो पहलू देखते हैं जिस पहलू में कुछ ना कुछ गलत हो गया है, और इसी कारण से कई बार हमें यही दिखना शुरू हो जाता है कि समाज में सिर्फ है ही ऐसा, सभी लोग खराब हैं, सभी लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं, सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो जो नकारात्मक सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस की वजह से हमारा जो नजरिया है वो भी कई बार बदलने लगता है। और आज के समय में कहा जाता है द ओनली कॉन्स्टेंट फैक्टर इन लाइफ इज चेंज। टेक्नोलॉजी बहुत बहुत स्पीड के साथ बढ़ रही है। हमें से कुछ लोगों ने जिन्होंने 25-30 साल पहले का मीडिया देखा, जहां पे न्यूज़पेपर भी जो छपते थे वो छापे के द्वारा छपते थे, और आज के समय में हर चीज न्यूज़पेपर जो है वो आपके पास प्रूफ है कंप्यूटर के ऊपर, इमीडिएटली उससे आप लाना शुरू कर देते हैं। कहीं की खबर को कहीं से अपलिंक करके, कहीं पे डाउनलोड करके और वहां पे आप दे सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी से कहीं से वो व्यक्ति सेलफोन के जरिए भी आज की डेट में खबर दे सकता है। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को पहचानना और उसी के साथ साथ बदलते जाना, वो भी एक बहुत कॉन्स्टेंट फैक्टर ऑफ स्ट्रेस देखा गया है। जिन लोगों के साथ मीडिया डील करता है, क्योंकि मीडिया की पावर बहुत है, तो आज के समय में मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लोग हर तरह के तकरीब जो तरीके हैं सामदान दंड भेद के वो अपनाते हैं। उन प्रेशर्स को संभाल पाना और उसके बावजूद एक तनाव मुक्त स्थिति में जी पाना, ये कांस्टेंट डे टू डे प्रेशर है जो कि मीडिया कर्मियों को सहना पड़ता है। और उसी के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल्स, 10 बजे शाम को बत्तियां बुझ गईं और सुबह 5 बजे उठ गए, ये बाहर नहीं होता। 4 बजे उठ के मेडिटेशन बाहर नहीं होती। शाम 7 या 8 के बाद शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, जिसमें कुछ तरह के खाने, कुछ तरह के पीने, कुछ तरह के सोने के अंदाज, कुछ खास तरह के रिश्ते, खास तौर पे बाहरी रिश्ते, और मैं छुपे रूप में बातें कह रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सब बैठे हैं यहां पे उस बात को समझ पा रहे होंगे। वो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ना जानते हुए भी ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में तनाव किसी ना किसी रूप में आना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली जो जीवन का एक लक्ष्य है कि हमारा अपना, जो काम कर रहे हैं उसका, और जो परिवार है, इन तीनों का एक समन्वय रहे, एक बैलेंस रहे, वो बैलेंस बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। कई बार लोग परिवारों से कट जाते हैं, कई बार काम में इतना फंस जाते हैं कि अपने आप से कट जाते हैं। तो जो बैलेंस है, जैसे ही इम्बैलेंस होना शुरू होता है वहीं से तनाव की शुरुआत होती है। अगले करीबन 10 मिनट में मैं साइंटिफिक रूप से तनाव की वजह से क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो हम पे असर डालता है उसके बारे में बात करेंगे, उससे निकलने के क्या तरीके हैं उसके बारे में बात करेंगे, और लास्टली जो एक अध्यात्म है जो जीवन में लाने से क्या फर्क पड़ता है फिर उसके बारे में बात करेंगे। जो बाहर से हो रहा है वो हमें तनाव नहीं देता, उसके बारे में जो मैं सोचता हूं वो मुझे तनाव देता। किसी ने मुझे कुछ कहा उससे तनाव नहीं है, लेकिन मेरे मन ने उसकी जो इंटरप्रिटेशन की उसका तनाव होता। तो इसीलिए ये कहना कि साहब मेरे जीवन में ये चल रहा है, इस वजह से मैं टेंस हूं, ये सच नहीं है। हम किस ढंग से उसे सोचते हैं उसकी वजह से मुझे तनाव होता। कहा जाता है कि कुछ तनाव ऐसे हैं जो सकारात्मक हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे तनाव महसूस करते हैं। मान लीजिए आपकी प्रमोशन हो गई, पदोन्नति हो गई, वो पॉजिटिव तनाव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। सब मानते हैं पॉजिटिव, दोनों हैं, बिल्कुल सही। देखिए, आपकी पदोन्नति हुई, आपकी प्लेट जो बाहर ऑफिस में लगी होगी वो अच्छी होगी, पैसा शायद बेटर मिलेगा, लेकिन अब आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, अब आपको ज्यादा लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, अब आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और शायद कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने पहले कभी नहीं की वह अब आपको करनी पड़ेंगी। सो हर सिचुएशन, और ये चीज और बहुत सी चीजें हैं, घर में बच्चा भी पैदा होता है, एक पॉजिटिव चीज सोची जाती है, लेकिन उसके लिए मां को रातों को जागना पड़ता है, परिवार को उसके लिए ज्यादा समय बिताना पड़ता है, उस चीज पे ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, और उसकी वजह से कई बार हमें अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो हर चीज जो हमारे साथ होती है उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पहलू हैं। हम किन पे फोकस करते हैं इससे हमारी इंटरप्रिटेशन होती है कि वो हमारे लिए तनाव का कारण बनती है या नहीं। ये जो आमतौर पे नकारात्मक बाहरी चीजें सोची जाती हैं जिनमें बीमारी आती है, एक स्टोरी सुनाता हूं आपको यहां से। दादी हिंदे मोनी तुम्हें आ रहे, दादी गुलजार, ओके। आप में से कुछ लोगों ने शायद दादी गुलजार जिनको कहा जाता है, हृदय मोनी दादी, जो कि दादी जानकी के साथ एडिशनल इस समय यहां की प्रशासिका हैं, मुख्य प्रशासिकाओं में, उनको एक बीमारी हुई, मेजर बीमारी, कैंसर हुआ आज से करीबन 25 वर्ष पहले। देखा जाए तो कैंसर किसी की भी जिंदगी में एक बहुत बड़े तनाव के रूप में आता है। दादी का कैंसर जो था उसने संस्था को एक तरह से नया मोड़ दे दिया, क्योंकि दादी के कैंसर के समय में जो उनको डॉक्टरी इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा, जिन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, उन्हीं डॉक्टरों ने ये सोचकर कि अगर दादी को वहां जाना पड़ रहा है तो और कितने लोग होंगे जिनको यहां पे मदद की जरूरत है, उन्होंने आके यहां पे ग्लोबल हॉस्पिटल खोला। और ग्लोबल हॉस्पिटल अब एक जगह नहीं, कई जगह फैले हुए हैं, उसकी वजह से नई तरह की सर्विसेज शुरू हुई। तो दादी की बीमारी, मेजर बीमारी, एक तरह से दादी के लिए नहीं लेकिन पूरी संस्था के लिए, लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज लेके आए। तो अगर हम हायर पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देखते हैं तो जो उस समय में एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही होती है वो अगर लंबे समय में देखें तो वो उतनी चैलेंजिंग नहीं लगती। इसी तरह से चाहे कुछ भी हो, फाइनेंशियल लॉस हो, घर में झगड़ा हो रहा है, बॉस आपका खराब है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। देयर इज एन ओल्ड सेइंग व्हिच सेज ऑलवेज ट्राई, If you succeed, you are a leader. If you don't succeed, you can guide others. तो हर चीज का experience होने के बाद हम उसको next time अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं। तो कोई भी external situation जो है कभी भी तनाव का कारण नहीं बनती। Divorce एक अच्छी चीज है कि नहीं? माना जाता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दो लोग जो एक डाइवोर्स में सालों से जूझ रहे हैं, बच्चों के ऊपर उनका असर हो रहा है, शायद उनके लिए अगर चीजें नहीं बन पा रही तो हट जाना बेटर है। सो हर एक्सटर्नल सिचुएशन अपने साथ चैलेंजेस के रूप में कुछ गिफ्ट भी लेके आती है। उस समय में हमें वो गिफ्ट पता नहीं लगती, लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए उससे हट जाएं, साक्षी हो जाएं, तो उसके अंदर जो गिफ्ट छुपी हुई है वो हमें बाद में पता लग जाती है। करना क्या है कि जो ऐसा तनाव है जिसे हम पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं जो कि अनकंफर्टेबल हैं, उनको मैनेज करना सीखें। दूसरा कि जो नेगेटिव जिसे हम सोच रहे हैं कि तनाव है उससे दूर हट जाएं। दूर हटने के आई विल कम टू इट दो तरीके हैं। पहला कि हम उस जगह या व्यक्ति से भाग जाएं, और दूसरा कि हम अपने आप को मानसिक रूप से उस जगह से हटा लें। सो आप हैं तो वहीं, लेकिन आपने अपने और उस तनाव के बीच में मानसिक रूप से एक दूरी पैदा कर दी, और जब वो आप कर पाते हैं तो आप उसी सिचुएशन में रहते हुए भी अपने आप को तनाव मुक्त रूप में रख पाते हैं। सिस्टर सोनू अभी बता रही थी स्ट्रेस कर्व के बारे में, थोड़ा सा मोटिवेशन होना जरूरी है, मैं उसे तनाव भी नहीं कहूंगा। अगर हमें किसी चीज को करने की थोड़ी सी भी मन में इच्छा नहीं है तो हम सुबह बिस्तर से ही नहीं उठेंगे। कुछ भी करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बदलना जरूर पड़ता है, वो इस कर्व का पहला हिस्सा है। अगर उसको हम सही रूप से कर पाए बिना अपने ऊपर उसे असर होने से तो वो पीक परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा देर तक चलता है तो फिर वो तनाव के रूप में आ जाता है। हर क्षण ये चेक करते रहने की जरूरत है कि क्या ऐसी सिचुएशन है जो कि कुछ लिस्टेड हैं। कुछ है डेली तनाव, मैं दिल्ली में रहता हूं, रोज अपने घर से काम पे जाने के लिए ट्रेवल करता हूं करीबन 25 किलोमीटर। किसी दिन मैं आधे घंटे में पहुंच जाता हूं और किसी दिन डेढ़ घंटा लगता, अगर अनलक्की हो तो तीन घंटे भी लगते हैं। वो डेली स्ट्रेसेस है। आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, वो डेली स्ट्रेसेस है। आप काम पे जाते हैं, आपका बॉस आते ही आपको क्या हुआ क्यों नहीं हुआ से शुरुआत करता है, वो डेली स्ट्रेसेस हैं। कुछ ऐसे स्ट्रेसेस हैं जो जीवन में एक दो चार बार ही आते हैं, कोई बहुत अपना है उसका इस दुनिया से चले जाना, या बच्चों का पैदा होना, या नई जॉब होना, ये कभी कभार आते हैं। ये जरूर कुछ देर के लिए तनाव देते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा के तनाव हैं जिसमें कि हमारी सोचने की शक्ति और किस रूप से हम बाहरी चीजों को अपने मन पे लेते हैं, जिसको कि हम एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स कहते हैं। कुछ लोग हर इवेंट को नकारात्मक रूप से लेते हैं और कुछ लोग हर चीज को हो जाएगा देख लेंगे संभाल लेंगे उस रूप में रहते हैं। तो हमारी सोच का जो ढंग है वो डिसाइड करता है कि वो हमारे लिए तनाव बनेगा या नहीं, और उसी के साथ साथ हम अपने जीवन में चाहते क्या है। यहां पे जितने लोग मीडिया में बैठे हैं, कितने लोग थे जो आए थे इसलिए कि इसमें पैसा बहुत है, कोई नहीं। मैं दूसरा भी एक रोल प्ले करता हूं डॉक्टर का, उस प्रोफेशन में भी लोग इसलिए नहीं आते कि उसमें पैसा बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बदलना शुरू हो जाता है। उस समय में फिर पोजीशन क्या है, कितना बड़ा ऑफिस है, पर्क्स क्या है, मंथली सैलरी क्या है, वगैरह वगैरह वो आने शुरू हो जाते हैं। तो जो बेसिक पर्पस है उससे हम हट जाते हैं। जब वो पर्पस ऑफ लाइफ मीनिंग ऑफ लाइफ बदलना शुरू होता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, लोगों से एक्सटेंसिवली बात करता हूं तब देखा है कि जो आप हैं, जिसलिए आप कोई काम कर रहे हैं और जो आपकी फिर एक्सपेक्टेशन है, अगर वो सेम लाइन में नहीं है वो तनाव का सबसे बड़ा कारण है। वहीं पे कॉम्पिटिशन्स, वहीं पे जेलिसीज, वहीं पे ऐसा महसूस करना कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना दूसरा है, या एक दूसरे की टांग खींचना वगैरह वगैरह होना शुरू हो जाता है। जब वो प्रोसेसेस शुरू होते हैं तो वो तनाव का एक सबसे बड़ा कारण बनना शुरू हो जाता है। ये मुझे बताने, कितने लोगों ने जीवन में कभी तनाव महसूस किया? गुड, करीबन 50% लोगों ने कभी जीवन में तनाव नहीं महसूस किया। मेरा हाथ भी खड़ा हुआ। इतने सालों के बाद भी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिनमें कि इंसान अपने आप को भूल जाता है, और फिर आप चेक करते हैं, चेंज करते हैं, वापस वहीं आ जाते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने कभी भी तनाव महसूस नहीं किया, चाहे थोड़ी देर के लिए। और जब होता है तो हम में से हर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है। शारीरिक रूप से कुछ चेंजेस होते हैं, मानसिक रूप से कुछ चेंजेस होते हैं, व्यवहारिक रूप से कुछ चेंजेस होते हैं, और भावनात्मक रूप से कुछ चेंजेस होता है। कुछ देर के लिए होते हैं तो हम उसे संभाल पाते हैं, ज्यादा देर के लिए चलते हैं तो वो बीमारी का घर बन जाते हैं। आज के समय में बर्नआउट जिसको कहा जाता है, इंसिडेंटली स्ट्रेस जैसे कि माना जाता था कि एक खास जीवन के मोड़ पे शुरू होता जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन अब वो जो वोकैबुलरी है वो बच्चों में आनी शुरू हो गई है, वो प्री नर्सरी में आनी शुरू हो गई है, उनके पेरेंट्स में आनी शुरू हो गई है। सही स्कूल जिसको कहते हैं वो नहीं मिला तो उसकी वजह से बच्चों में या पेरेंट्स में तनाव होना शुरू हो जाता है, फिर एक होड़ लगनी शुरू होती है, फिर अच्छा स्कूल, अच्छे नंबर, अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स, अच्छी बीवी, अच्छा घर, अच्छी जॉब, अच्छे की डेफिनेशन जो है वो चेंज होती रहती है। वो तनाव के कॉन्स्टेंट सोर्सेज रहते हैं। और स्टेजेस हैं जिसको हम स्टेज ऑफ बर्नआउट कहते हैं, यानी जल जाना, जैसे रस्सी जल जाती है, दिखने में रस्सी रहती है, अगर आप किसी रस्सी को जला दें और वहीं पे रहने दें, दिखने में रस्सी रहेगी लेकिन अंदर जान नहीं है, और उसको आप हाथ भी लगाएंगे वो बिखर जाएगी। तो उसी को हम लिटरली शारीरिक और मानसिक रूप से बर्नआउट कहते हैं, जिसमें व्यक्ति दिखने में ठीक है, काम कर रहा है, लेकिन अंदर से एक खोखलापन महसूस कर रहा। और यही कारण है कि आज के समय में तनाव जो है वो इन सब शारीरिक, नेक्स्ट में आऊंगा मानसिक और सामाजिक बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, मैं लेट 70s की बात कर रहा हूं, 78-79 में MBBS किया मैंने, उस समय में जितने भी आंकड़े थे बीमारियों के वो अलग थे। ब्लड प्रेशर 1-2% लोगों में होता था, डायबिटीज 2-2.5 या 3% लोगों में होती थी, ब्लड प्रेशर आज 25% लोगों में पाया जाता है, डायबिटीज 12-15% लोगों में पाया जाता है, कैंसर्स 1% लोगों में होता था, आज 8-10% लोगों में पाया जाता है, हार्ट डिजीजेस 50 के बाद मानी जाती थी, आज 30 के बाद शुरू हो गई हैं। हार्ट डिजीज पहले 2-3% में मैक्सिमम पाया जाता था, आज 15-20% में पाया जाता है। ये ज्वलंत आंकड़े हैं जिसमें कुछ खास नहीं बदला है, तनाव बदला है, जीवन शैली बदली है और लोगों का सोचने का ढंग बदला है। ये सारे हमारे शरीर पर कॉन्स्टेंटली जब काम करते हैं, लगातार हमें एक तनावग्रस्त स्थिति में रखते हैं, तो इनसे ये सारी आज के समय की मॉडर्न मेडिसिन जिनसे जूझ रही है पूरी तरह से, उनकी देन है। उसी तरह से जब तनाव आता है तो मन पे उसका असर पड़ता है, और वो डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, खासतौर पे शराब का सेवन, और आज के समय में और कई तरह के सेवन, प्लस रात को नींद ना आना, पूरी तरह से थकान रहना हर समय वगैरह वगैरह, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानसिक रूप से हम देखते हैं। और ऑफ कोर्स सामाजिक रूप से, कितने लोग नॉर्थ इंडिया से हैं यहां पर? ओके, पिछले करीबन तीन हफ्तों में पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 7 तक जो खबरें हैं वह ये हैं कि मर्डर्स कितने हुए, किसने किस तरह से दूसरे के साथ होड़ में आके मर्डर किया, परिवार का परिवार खत्म हुआ, या रोड रेज हुई, किसी ने सड़क के ऊपर किसी को कैसे मार दिया। ये चीजें देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन क्योंकि वो समय के साथ साथ व्यक्ति के अंदर दब रही हैं, वो अचानक एक समय में बाहर आती हैं। और आने वाले समाज का रूप अगर हम इसी रूप से चलते रहे तनावग्रसित, तो स्वर्णिम नहीं होगा। मैं वही कह रहा था कि यहां पर आप जो देखते हैं और जब आप बाहर जाते हैं जो देखते हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर पाते होंगे। और वो अंतर यही है कि हमें एज अ ग्रुप चूज करना है कि आज के समय में आंतरिक तनाव जो है हम उनको किस तरह से मैनेज करें। और खासतौर पे ये जो ग्रुप है, मीडिया का ग्रुप है, ये अगर अच्छा खुद मैनेज करता है और फिर दूसरे लोगों को वो राह दिखाता है, तो हम स्वर्णिम युग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ये लगता है समाजशास्त्री होने के रूप में कि 5 से 7 वर्षों में जो समाज का आईना होगा वो बहुत भयानक होगा। और वो भयानक आईने के शुरुआती रूप जो हैं वो एक तरह से हम ऑलरेडी देख रहे हैं। सो सेकंड पार्ट, इसको हम कैसे संभालें, बाहर को बदल दें, पॉसिबल है। अपने परिवारों में भी लोगों को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने ऑफिस में बदलना, खासतौर पे आपका बॉस हो तो और मुश्किल हो जाता है। जूनियर हो आप उसे थोड़ा सा प्रेशर देके शायद काम करवा लें, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदलेगा। रोड के ऊपर बदलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो चीज बदली जा सकती है, जिसपे मेरा पूरा कंट्रोल है, वो हूं मैं खुद। अगर मेरा सोचने का ढंग बदलता है तो धीरे धीरे आसपास के लोगों का सोचने का ढंग बदलेगा। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि देखें कि मैंने क्या चीज बदलनी है, सेकंड किस तरह से बदलनी है, और फिर आंकलन करें कि क्या मैं उस राह पे चल रहा हूं। और उसके लिए बार बार खुद को चेक करना और फिर चेंज करना ये जरूरी हो जाता है। ये हम कुछ आमतौर पे कोशिशें करते हैं जब छोटी मोटी बदलने की, तो कुछ लोग इन नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज की तरफ घुस जाते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है। कुछ देर के लिए लोग समझते हैं कि उस 2 घंटे में या एक सिगरेट के 15 मिनट बाद तक थोड़ा सा ईजी महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो उसका लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत मुश्किल वाले होते हैं। कुछ लोगों का ज्यादा सोना, कुछ लोगों का भूख ना लगना, कुछ लोगों को ज्यादा खाना, एक समाज में एक ऑलरेडी एक चीज हम देख रहे हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो उस बैलेंस को खो देते हैं और बहुत ज्यादा काम करने लग जाते हैं। वर्क एल्कोहलिज्म खास तौर पर कुछ प्रोफेशंस में, जैसे हमारा प्रोफेशन है, उसमें समझा जाता है कि बहुत अच्छा 16 घंटे काम कर रहे हैं, किसी और के लिए समय नहीं है, मेरे लिए भी समय नहीं है, लेकिन एक्चुअली शायद मैं किसी चीज से भाग रहा हूं, मैं उस चीज को फेस नहीं करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि अगर मैं काम करता रहूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन खुद से भी भाग रहे हैं, परिवार से भी भाग रहे हैं, और बहुत जल्द ही वो बैलेंस खो जाने की वजह से लोग शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं। क्या करें? प्रिस्क्रिप्शंस एज अ डॉक्टर मैं कह सकता हूं बहुत आसान है। अगली 2-3 स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। शुरुआत क्योंकि खुद से करनी है, इसलिए ये चीजें मेरे हाथ में हैं। टाइम मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है, कितना समय किस व्यक्ति को कैसे दूं। हम में से कितने लोग हैं जिनका सेल फोन दिन में कुछ देर के लिए बंद रहता? वेरी गुड, आप रखते नहीं है? एक्सीलेंट, बंद नहीं करते। ओहो, अच्छा। देखिए, आज से 16 साल पहले इंडिया में सेलफोन आया। सेलफोन से पहले भी तो काम चलता था ना, और अगर कुछ देर के लिए सेलफोन बंद हो जाएगा या साइलेंट हो जाएगा तो पहाड़ नहीं टूटने वाला। अगर कोई अर्जेंसी है तो कोई अल्टरनेट नंबर होगा ही, और अगर नहीं है तो दो घंटे बाद आपको पता लग जाएगा कितनी मिस्ड कॉल आई। और अगर लोगों को पता लग जाएगा कि आप शाम के बाद फोन नहीं लेते हैं, बिलीव मी, ट्राई कीजिएगा कि 15-20 दिन के बाद आपकी उस समय की कॉल्स एकदम कम हो जाएंगे। रात के समय तो सेल फोन बंद कर सकते हैं, जब किसी से बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट तब तो सेल फोन को साइलेंट कर सकते हैं। वो एक सबसे बड़ी इंट्रूजन है। दूसरी, उसी की एडवांस्ड बहन ब्लैकबेरी, जिसमें कि हर समय आपको एसएमएस बीम होता है, ईमेल्स बीम होती हैं। अगर हम 12 घंटे के लिए वो नहीं देखते, पहाड़ नहीं टूटने वाला। बीच में अगर हम उसे साइड पे रख देते हैं, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बहुत बड़ी, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी के टेलीविजन चैनल के सीईओ को जानता हूं, जो दिन में सिर्फ एक घंटे के लिए अपने सेलफोन का इस्तेमाल करते, उसी एक घंटे में ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करते और बाकी सारे लोग वेट करते। अगर कोई इमरजेंसी है तो जो लैंडलाइन नंबर है उस पर मैसेज दीजिए, आप तक पहुंच जाएगा। इससे आप अपने समय के मालिक बनते हैं। समय आपका मालिक नहीं बनता, दूसरे लोग आपका मालिक नहीं बनते। मैं टॉयलेट में बैठा हूं और कोई मुझसे उस समय में फोन पे बात करके अपनी सारी कहानी सुनाना शुरू करता है, क्या मेरे पास इस उम्र तक, इस मकाम तक पहुंचने के बाद अपने लिए वो आधा घंटा भी नहीं होना चाहिए? ये सब क्वेश्चंस हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं अपने लिए जवाबदेही लेनी पड़ेगी। उसी तरह से नींद, ज्यादातर टेलीविजन के कारोबार अब 9 के बाद शुरू होते हैं। सो प्राइम टाइम जब शुरू हुआ था तो 7 से 8 होता था, फिर वो बदल के 8 से 9 हुआ, फिर वो 9 से 10 हुआ, अब 10 से 11 है। 24 आवर चैनल है, उन चलनी है तो जरूरत है कि हर टाइम को बीच बीच में प्राइम टाइम बनाया जाए। तो 9 बजे के बाद चीजें शुरू होती हैं। 8 से 15 वर्ष पहले 9 बजे के बाद किसी को फोन करना बिना इमरजेंसी के अजीब समझा जाता था। अभी आपको पता है कि 9 बजे के बाद व्यक्ति अवेलेबल होगा तो 9 बजे से चीजें शुरुआत होती है। सो ये सारी चीजों से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की, आपकी और मेरी नहीं, लेकिन सबका सोने का समय करीबन 1.5 घंटा, ये आंकड़े बताते हैं, 1.5 घंटा लेट हो गया, विच मीन्स कि लोग 1 से 1.5 घंटा कम नींद करते हैं। नींद एक ऐसी चीज है जो कि अब मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर कह रहा हूं कि उस समय में जो जो हमने सारा दिन में अपने इस कंप्यूटर से काम किया है उसमें उसकी फाइलिंग होती है, उसमें उसको अलग अलग जगह पे रखा जाता है और वो अगले दिन के लिए प्रिपेयर होता है। तो अगर मैंने कम कर दिया वो पीरियड तो अगले दिन मैं प्रॉपरली फ्रेश नहीं हूंगा, दिन को फेस, और जो वो डेफिसिट होता है जिसको हम स्लीप डेफिसिट बोलते हैं वो हर दिन बढ़ता जाता है। तो अगर आप एक पायलट हैं तो बहुत ही डेंजरस है, अगर आप एक पॉलिटिशियन है तो भी डेंजरस है, या शायद बिल्कुल ही डेंजरस नहीं है, अच्छा है। ब्यूरोक्रेट हैं, मैटर्स अ लॉट। अगर आप ड्राइवर हैं, जो कि हम में से हर कोई है, तो आपका वो जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का अच्छा डिसीजन लेने वाली पावर है वो कम हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई वी सी अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग। तो हर रूप से जो नेचर ने करोड़ों वर्षों में हमें जल्दी सो के और जल्दी उठने की आदत डलवाई, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो नेचर के सूरज और चांद के साथ चलती है, डे टाइम और नाइट टाइम के साथ चलती है। सर्दियों में ज्यादा सोने की इच्छा भी होती है और जरूरी भी है, क्योंकि रातें लंबी होती हैं। लेकिन हम उन सब को इस लाइट, टेलीविजन, इंटरनेट की वजह से साइड पे करके 24/7 जो कि हमारी न्यूज चैनल्स में है वही चीज अपने जीवन पे अपना लेते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑल द टाइम, और उसकी वजह से जो फ्रेशनेस और रेस्ट होना चाहिए, मुद्दे बहुत छोटे हैं लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक मैं अपनी सही स्थिति में नहीं हूं तो मैं बाहरी तनावों के साथ पूरी तरह से जूझ नहीं सकता। उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन, टेलीविजन चल रहा है, साथ में जो भी आया, कई बार लोगों को मालूम नहीं होता कि उन्होंने किस चीज में हाथ डाला, चिप्स हैं तो चिप्स में हाथ डाला, पकौड़ा है तो पकौड़े में डाला, और कुछ नहीं है तो पूरा पैकेट बिस्किट का खत्म हो गया, कोक खत्म हो गया। सो एंड ऑफ द डे आपको पता ही नहीं है कि आपने कितनी न्यूट्रिशन ली। इंसिडेंटली माइंड जो है वो एक बहुत अच्छी चीज ये करता है कि जहां पे हमें ज्यादा ब्लड की जरूरत है वहां पे भेज देता। तो अगर हमें खाना खाना है तो एक्चुअली पेट के अंदर ज्यादा ब्लड प्रवाह होना शुरू हो जाता। अगर हमें भागना है तो उस समय पेट खाली इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आपके हार्ट को ज्यादा जरूरत है। अगर हम कोई मेंटल काम कर रहे हैं तो उस समय ब्रेन को ज्यादा जरूरत है, ब्लड वहां पे ज्यादा जाएगा ताकि वहां पे न्यूट्रिशन चले। तो अगर हम टेलीविजन देख रहे हैं और साथ ही खाना खा रहे हैं तो ब्लड जो है वो दो जगह में डिवाइड हो गया, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी। साथ ही साथ अगर सीरियल में गाली गलौज चल रहा है, सास बहू का झगड़ा चल रहा है, कोई मर्डर मिस्ट्री है, किसी को हम शूट होते या मर्डर होते देख रहे हैं, उससे हमारी इमोशंस पे फर्क पड़ता, और क्योंकि इमोशंस पे फर्क पड़ता है तो हमारी डाइजेशन पे भी फर्क पड़ता। तो हम क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, और हमें क्या खा रहा है मानसिक रूप से, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पे राजयोग में आपने शायद नोटिस किया होगा ब्रह्म कुमारीज में कि खाने पर बहुत महत्व दिया जाता है। उसका कारण यह है कि जब खाना बने तो खाना बनाने वाले अपने भाव प्यार का उसके अंदर डालें, शुद्धता से बनाएं। जो खाने वाला है उसको खाने से पहले ग्रहण करने के भाव में आ जाए। आप भगवान का शुक्रिया अदा करें, खाने का शुक्रिया अदा करें, अपना शुक्रिया अदा करें कि आपके सामने एक अच्छा भोजन परोस दिया गया, क्योंकि आपके पास पड़ा हुआ है और खाने का समय नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो उस भाव से जब आप खाते हैं तो हर खाने का हिस्सा आपके द्वारा सही प्रकार से पचाकर सही रूप में पूरे शरीर में प्रवाह करता। सो अगेन वन ऑफ द थिंग्स विच वी हैव फॉरगॉटन, परिवारों का साथ में बैठ के खाना बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि वहां पर ही हम एक दूसरे से मिलजुल के बात कर सकते हैं, वहां पे रिश्ते बनने शुरू होते हैं। लेकिन अभी तीन लोग हैं घर में तो तीन टेलीविजन है, तीन कमरे हैं और तीन समय पर खाना होता है, तो उस समय में किसी को पता नहीं है कि किसने बनाया, किसके लिए बनाया, कैसा बना या नहीं बना, खाया या नहीं खाया और कितना खाया। सो वो सारी जो चीजें थी समाज की वो बदलती जा रही हैं। अगेन एक्सरसाइज, हम में से सिर्फ 10% लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, ये सच है, आंकड़े बताते हैं। 50-60% लोग आज के समय में ओवरवेट हैं या ओबीज जिनको बोला जाता है, जिससे कि और कई तरह की बीमारियां शुरू होती हैं। किस भाव से हम अगर हर समय जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शरीर के और मन के बारे में सोचें, किस चीज के करने से मुझे कितना फायदा हो रहा, किस तरह से पूरे शरीर में खून का सही प्रवाह हो रहा है, किस तरह से एक एक सेल को मैं ब्लड दे रहा हूं, तो वो जब होगा तो आप हर चीज को कॉन्शियस रूप से ठीक तरह से सुचारू रूप से चला पाएंगे। अगेन कुछ चीजें, ब्रीदिंग किस तरह से हम करते हैं, इंसिडेंटली कितने लोग हैं जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, एक हाथ आया मुझे सिर्फ। देखिए ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जो हम में से हर किसी को करनी पड़ती है, कम से कम 8 बार हर मिनट। आप 1 मिनट से ज्यादा ब्रीदिंग रोक देंगे तो आप नहीं होंगे, लेकिन वो ब्रीदिंग भी हमने एक अनकॉन्शियस प्रोसेस बना दिया, जैसी चल रही है चल रही है। अगर हम सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ठीक तरह से सुचारू रूप से करना शुरू कर दें तो हम हर समय तनाव मुक्त रह सकते हैं। ब्रेन सिग्नल्स देता है हमारे लंग्स को और इस एरिया को, और इस एरिया को ब्रीद करने के लिए। जब हम ब्रीद करते हैं तो अगर हम पेट से ब्रीद करते हैं तो हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, ज्यादा गहरा सांस ले पाते हैं, और वो जो सांस है वो धीमा होगा, लंबा होगा, गहरा होगा। उस स्थिति में हम तनाव नहीं महसूस कर सकते। जैसे ही हम चेस्ट से ब्रीद करना शुरू करते हैं तो वो फास्ट हो जाता है, वो तनाव मुक्त नहीं, तनाव जड़ित सांस है। सो अगर हम बैठे बैठे सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ही ठीक तरह से सुचारू रूप से चलाना शुरू कर देते हैं तो चीज ठीक होने शुरू हो जाती है। लेट्स टेक 30 सेकेंड्स कि हम ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं। दोनों हाथ यहां रखें, एक इधर एक इधर, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि मैं कहां से ब्रीद कर रहा हूं। और पेट को धीरे धीरे छाती का हाथ बिल्कुल स्थिर है और पेट चल रहा है, जब वो होना शुरू होता है तो हम अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। उस समय में तनाव नहीं हो सकता। सो द मिनट यू बिकम जी एक जी हाँ सही कह रहे हो। ओके पेट के अंदर सांस नहीं जाती, सांस जाती सिर्फ फेफड़ों में है, लेकिन अगर हम यहां से सांस ले रहे हैं तो ये मसल्स हैं जो कि ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। धौंकनी आपने कभी देखी है, जो भटियारे धौंकनी करते हैं जी? मैं वही बता रहा हूं कि जब हम अपने पेट को बाहर करते हैं तो यहां से सांस में वैक्यूम बन जाता है, तो जो बाहर की हवा है वो अंदर आ जाती है। जब हम पेट को अंदर करते हैं तो जो अंदर की सांस है उसमें प्रेशर बन जाता है, वो बाहर चली जाती है। तो जा तो सिर्फ फेफड़ों में ही रहा है, लेकिन प्रेशर बनाने की जगह पेट है, छाती नहीं। छाती में हड्डियां होती हैं, रिब्स जिनको बोलते हैं, और उनको हम बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसलिए हम कम सांस ले पाते हैं। लेकिन पेट को हम ज्यादा बाहर और अंदर कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन भी अंदर आती है और उसको कंट्रोल करना भी ज्यादा आसान होता है। हम में से 90-95% लोग सही सांस को लेना भूल गए हैं, और वो एक मेन कारण है तनाव का हमारे शरीर में आने का। सांस लेते वक्त पेट से प्रेशर क्रिएट करें और फिर पेट से ही प्रेशर बाहर निकाल दें। सांस जाएगी छाती में, पेट में सांस नहीं जा सकती, लेकिन प्रेशर ज्यादा अच्छा क्रिएट होगा छाती के अंदर, क्योंकि ये दोनों एक झिल्ली होती है डायफ्राम नाम से, उससे जुड़े हुए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत तनाव अच्छा है। ज्यादातर लोग नहीं करते, कोई लोग नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। ओके, आप में से कितनों के पास पर्सनल टाइम होता, अपने लिए समय, दिन के 2-4 घंटे इफ पॉसिबल, जिसमें आप किसी से बात नहीं करते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? एक्सीलेंट, करीबन 20-25% ने कहा कि है। उस दौरान में हम अपने पूरे दिन की रील जो है उसको चलाएं। मैंने क्या किया, क्यों किया, ठीक किया, नहीं किया तो नेक्स्ट डे क्या कर सकता हूं, किस तरह से अपने आप को बदल सकता हूं। और ये मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी वाहन में सफर कर रहे हैं जो आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो वो टाइम अपने लिए यूज हो सकता है। बीच बीच में अगर आप सेलफोन बंद कर देंगे तो टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। भोजन को अगर बिना किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन के करना शुरू कर देंगे तो टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। रात को सोने से आधा घंटा पहले हर चीज को बंद कर देंगे तो वो टाइम मिल जाएगा। सुबह आधा घंटा जल्दी उठना शुरू कर देंगे तो वो टाइम मिल जाएगा। एक तरह से ये अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका। बार बार हम वायरल प्रॉब्लम्स को अपने कंप्यूटर में चेक तो करते हैं, नॉर्टन हम में से हर किसी के कंप्यूटर में होता है, लेकिन यहां के लिए नॉर्टन नहीं है कि जो नकारात्मक विचार चले उसको मैंने डिलीट किया कि नहीं किया, उनको फिर से ना आने दूं, इसका कोई नया तरीका सोचा कि नहीं सोचा। तो जब तक हम उस चीज को नहीं करते जो कि सिर्फ एकांत में हो सकता है, जो सिर्फ अपने आप हो सकता है, आई कैन ओनली अश्योर यू वन थिंग, और ये जितनी भी चीजें मैं कह रहा हूं ये पर्सनली प्रैक्टिस करने के बाद कह रहा हूं, मेरे आप में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि अपने दूसरे प्रोफेशन मीडिया के सिवा, साइकेट्रिस्ट होने के नाते, जो मैं लोगों को कहता हूं, अच्छा है कि थोड़ा पहले खुद भी ट्राई कर लो। और 20 साल से यहां पर जब मैं पहली बार पहुंचा और उसके बाद कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद एक जर्नी शुरू हुई, एक साल तक जो सिस्टर मुझे 7 दिन का जिसे कोर्स कहते हैं वो करा रही थी, उनको मैंने बहुत बहुत तंग किया, बहुत प्रश्न पूछे, बहुत डाउट्स क्लियर किए, ठोक बजा के जब देखा, फिर साइंस में के क्या है उसको इसके साथ कनेक्ट किया, फिर खुद एक्सपीरियंस किया, सिर्फ वही बात कर रहा हूं, कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो हम करना शुरू करते हैं तो हमारे पास रोज और नया टाइम बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके डिसीजंस क्विक होने शुरू हो जाते हैं, आपके नकारात्मक विचार कम होने शुरू हो जाते हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब वो होना शुरू होता है तो जितना काम आप पहले 8 घंटे में करते थे अब 5 या 6 घंटे में करना शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर फास्ट होना शुरू हो जाता है, फाइलें नेगेटिव डिलीट हो रही हैं तो कंप्यूटर फास्ट चलेगा ही ना, तो जब वो फास्ट चलना शुरू हो जाता है तो आपके काम जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन उसको रोजमर्रा में चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, ये कुछ और तरीके हैं जो जहां पर हम हैं अपने आसपास, चाहे वो परिवार है, चाहे वो जिस जगह में हम काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ रिलेशनशिप है, उसको क्या क्या तरीके हैं तनाव को कम करने के, पहले आइडेंटिफाई कर ले कि कौन है बाहरी रूप से या क्या है जिससे मैं तनाव रोज महसूस करता हूं, और फिर किस तरह से या उसको हटा दो या खुद हट जाओ या उसके और अपने बीच में एक मानसिक बैरियर ले आओ ताकि आप उसे देखें तो सही लेकिन महसूस ना करें। साथ ही साथ दूसरे लोगों की मदद लेना, दूसरे लोगों के साथ जुड़े रहना, कोई ऐसी जगह जहां पे कि आप सोशल ग्रुप जिसे कहते हैं, जहां पे कि आप खुल के अपने मन की बात कर सकें, खुल के जो तनाव है उनके बारे में कभी बात कर सकें। बहुत कम ऐसे आज के समय में लोग हैं या जगहें हैं जहां पे कि आप खुल के बिना ये सोचे हुए कि वो मेरा कोई एडवांटेज तो नहीं ले लेगा कर सकते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसे दोस्त या रिलेटिव्स हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा पहले सोचा जाता था कि जो आध्यात्मिक बातें की हैं उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लेकिन पिछले कुछ करीबन 20 वर्षों में ये चीज चेंज हुई है। लीड ली थी एक्चुअली अमेरिका ने। अमेरिका में करीबन 225 मेडिकल कॉलेजेस हैं, आज के समय में 175 के करीब में आध्यात्म जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है। सो स्पिरिचुअलिटी एज अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मेडिसिन इज हैपनिंग इन अमेरिका। इंडिया में अभी नहीं होना शुरू हुआ, लेकिन अगर हम गूगल करें, शोध करें स्पिरिचुअलिटी इन मेडिसिन या स्पिरिचुअलिटी इन माइंड या स्पिरिचुअलिटी इन स्ट्रेस, तो करीबन 8 लाख गूगल रिजल्ट्स आएंगे। उनमें करीबन, मैंने एक बुक के लिए इसका शोध किया था, करीबन 11,000 जिन्हें डबल ब्लाइंड ट्रायल्स कहते हैं वो इस चीज के लिए हुई है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या रोल है, और उसमें ये चीजें निकल के आई हैं। बहुत कम समय में बताने की कोशिश करता हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड, आशा, थोड़ा सा हंसना। कितने लोग हैं जो रोज हंसते हैं? हंसते हैं, स्माइल या यूं नहीं, बहुत कम है। बच्चा जो है दिन में करीबन 80 बार हंसता है, उसको हंसने का कोई कारण नहीं है, उसको समझ नहीं आता किस चीज पे हंसना। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम बचपना खोते जाते हैं, हंसना भी खोते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही आप हंसते हैं विद इन सेकेंड्स पूरे शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो बदल जाते हैं, और जैसे ही हम दुखी होते हैं तो शरीर के हार्मोन्स एकदम फिर बदल जाते हैं। तो अगर हम किसी चीज पे नहीं हंस सकते तो खुद की बेवकूफियों पे कभी कभी हंस लें, कोई बुराई नहीं है, वो सबसे अच्छा तरीका है एक्चुअली दूसरों पे हंसने के बजाय। तो अगर हम वो करना शुरू करते हैं तो एकदम हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदलनी शुरू हो जाती है। लव एक बड़ा फैक्टर जिसको स्पेशली अनकंडीशनल लव कहते हैं। बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए हम हर कोई थोड़ा सा लव महसूस करते हैं, लेकिन हर किसी जिससे हम मिलें उसको हम एक आत्मिक भाव से देखें और किस तरह से हम उसे प्यार कर सकें। अगर ये एक बहुत मुश्किल काम नहीं है, स्पेशली जब आप एंड ऑफ द डे 3 सेशन हो चुके होंगे उस पे पहुंचेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। पर्पज ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, कनेक्टिंग विद माई हायर सेल्फ एंड स्पेशली गॉड, प्रेयर्स और मेडिटेशन, इस पे एक्सटेंसिव शोध हुई है। और किस तरह से ये हम रोजमर्रा में अपने जीवन का अंग बना सकते हैं इसके बारे में बहुत लिटरेचर आज के समय में उपलब्ध है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज साइंटिफिक एज ऑफ नाउ, लेकिन उसको जब तक हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे किताबों में रहने से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बदलना ये है। ये एंड ऑफ द डे, अगले 4-5 मिनट में मैं समाप्त करने वाला हूं, ये हमारे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है कि हमें ये चीजें बदलनी है। अगर हम बदलना चाहें, हमारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक आदतें, हमारा सोचने का ढंग, लोगों के साथ गलत इंटरेक्शंस और अपने बारे में या दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच, जो पुरानी सालों की विजडम है जो हम बात कर रहे हैं वो नई नहीं है। अगर आप 30-40 वर्ष पहले के गांवों में जाएं और वहां पे जो होता था उनके बारे में बात करें तो यही प्रिंसिपल्स थे। किसी भी रिलीजन की स्पिरिचुअल ट्रैक्स में जाएं, यही बेसिक प्रिंसिपल्स थे। लेकिन आज के संदर्भ में उसे कैसे अपनाना है ये हम कुछ हद तक भूल गए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट धार्मिक रूप में भी किया जा सकता है, और धार्मिक रूप में अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ तरीके हैं। मेडिटेशन पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके बारे में बाद में बात सेशन सेपरेट है मेरे ख्याल से। लेकिन मेडिटेशन जब हम करते हैं 20 से 30 मिनट तो पूरे शरीर में जिसको हम रिलैक्सेशन रिस्पांस कहते हैं वो आनी शुरू हो जाती है जो 6 से 8 घंटे तक रहती है। तो अगर हम दिन में 2 बार 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में सकारात्मक और रिलैक्सिंग रिस्पांस होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हम आने वाले 6-8 घंटों में अपने आप को पूरी तरह से तनाव मुक्त कर सकते हैं। राजयोगा लिविंग में क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम तनाव मुक्त रह सकें? एक पावर पॉइंट के रूप में मैंने ये दर्शाने के लिए किया है। वहां पे आपको एक ग्रुप सपोर्ट मिलती है। यहां पे जो सारे लोग बिना किसी पैसे को लिए, बिना मान शान को लिए, किसी का कोई स्पेशल टाइटल नहीं है, लेकिन एक दूसरे की सपोर्ट से अपने आप को बदलने की जो कोशिश करते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। समय की पहचान और किस तरह से हमें उस समय के हिसाब से खुद को बदलना है, समय को नहीं, उसकी पहचान जब वो होनी शुरू हो जाती है, दूसरे लोग जो कि किस प्रकार से अपने जीवन में बदलाव लाए हैं तो वो दूसरों को अपने ढंग से अपने एक्सपीरियंसेस से मदद कर सकते हैं, दूसरों की बिना किसी एक अपेक्षा के, विदाउट एनी डिजायर टू गेट बैक, जो एक सेवा है। यहां पे जितने भाई बहन पिछले 2-3 दिन में आपके साथ रहे शायद आप उन्हें जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब वो आपके शहर में आएंगे तो आप उन्हें कुछ मदद करेंगे। सिर्फ सेवा है जो फ्लो करती है, तो वो एक सेल्फलेस जो सेवा है वो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हर समय परमात्मा के साथ जुड़े रहना जो कि एक बैटरी है, वो एक कनेक्शन है जो कि मेडिटेशन में भी मदद करता है, वो एक इंग्रेडिएंट है। लगातार जब भी समय मिले, यहां पे आपने देखा होगा घंटे घंटे बाद 1-1 मिनट की मेडिटेशन और फिर बीच बीच में 3 से 5 मिनट की मेडिटेशन, सेशन शुरू हुआ सेशन खत्म हुआ वो मेडिटेशन, वो जो सारा दिन में चलती है वो एक तरह से हमें बचा के रखती है। आज हम उस कगार पे खड़े हैं जहां पे हमारे हाथ में है कि समाज को दिशा क्या देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से दिशा देने से पहले खुद को तनाव मुक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दूसरों को तनाव का भाषण दें और यहां से बाहर निकलें और खुद तनाव में हो जाएं या खुद वही चीजें आपके जीवन में हो तो आप दूसरों को कह नहीं सकते। जो एक्सेसिव प्रोग्रामिंग है, देखिए हर कंप्यूटर की एक लिमिट है, इस कंप्यूटर की भी एक लिमिट है। अनफॉर्चुनेटली हम इसे भरते जा रहे हैं अपने अंदर भी और समाज के अंदर भी। तो जो टॉक्सिक प्रोग्रामिंग है जो कि हमारे हाथ में है, क्या लिखें क्या टीवी पे दर्शाएं, ये हमारे हाथ में है। अगर उसको कुछ हद तक हम बदल सकेंगे तो फिर ये एक जिसे रिपल इफेक्ट कहते हैं, तालाब में आप एक छोटा सा कंकड़ डालें, वो जो छोटी सी वेव निकलती है वो वहीं तक नहीं रहती, वो धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल जाती है। मीडिया एक बहुत पावरफुल मीडियम है जिसकी वजह से समाज में सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के बदलाव आ सकते हैं। हम किस दिशा में बढ़ना चाहेंगे और कहां से बढ़ना चाहेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से वो प्रोसेस मुझसे आपसे यहीं पे शुरू होता है ताकि बाहर जाकर हम उस चीज को कर सके। पर्सनल एक्सपीरियंस, दो मिनट। जैसा मैंने कहा कि मैं 20 वर्ष पहले पहली बार यहां आया, उस समय नहीं लगता था, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं कि हम में से हर किसी का यहां आने का एक पर्पज है। आप या मैं अपनी विल से यहां नहीं आए। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए भी शायद 25-30 हजार इन्विटेशंस गए होंगे, 5-1 हजार इंपॉर्टेंट लोगों को इन्विटेशन गए होंगे, लेकिन सिर्फ आप ही आए। पीछे मुड़ के मैं देखता हूं, मुझे ब्रह्म कुमारी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ऑस्ट्रेलिया से पहली बार एक निमंत्रण आया कि एक 7 दिन की रिट्रीट है, वहां पे आप आइए। मैं आप जैसे ही बहुत 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 बिजी था, कैरियर पीक पर था, जो वर्ल्डली मिल सकता है मिल चुका था। आई थॉट कि यार 7 दिन के लिए समय निकाल पाना इम्पॉसिबल। खैर फिर भी आया। तीसरे चौथे दिन बदलाव आने शुरू हुए, बहुत अलग अलग तरह के, जो एक नशे की स्टेज जिसे कह सकते हैं, लेकिन वो रूहानी नशा था। यहां के खाने में कोई चीज मिला के नहीं दिया जाती। सो दूसरे तीसरे दिन जो आपको अंदर से एक नशा महसूस होता है, वो नशा रहा। वो नशे को जब एक्सपीरियंस किया तो मेरा पहला मन में ये आया कि कुछ खलबली मच रही है। वापस किया दिल्ली, बैक टू बिजनेस, वही चीजें जैसे मैं कह रहा था, वही डेडलाइंस, वही प्रोग्राम्स, वही प्रैक्टिस शुरू हुई। एक चीज फिर भी अच्छी हुई कि मैंने वो जो 7 दिन के कोर्स की बात थी वो किया। तो प्रश्न और बढ़े, प्रश्न बढ़े तो उन प्रश्नों का जवाब मांगा, वो जवाब मिले। तब से लेके अब तक क्या सत्य है उस प्रश्न को फिर भी ढूंढ रहा हूं। 20 वर्षों के बाद कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान की रोजमर्रा धारणा करना उससे ज्यादा जरूरी है। वो लोग जो आपके साथ उस ज्ञान को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका संग रखना बहुत जरूरी है। और मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं और किस दिशा में जा रहा हूं, ये चेक करते रहना बहुत जरूरी है। एक चीज आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, और वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो दुनियावी रूप में आप में कमी नहीं में होती। आई हैव फाउंड आई हैव ग्रोन मेनी फोल्ड, नॉट ओनली इन माई प्रैक्टिस बट इन माई पर्सनल लाइफ। क्या परिवार को छोड़ना जरूरी है? नो। मेरी वाइफ जो अभी यहां नहीं है, दिल्ली में है, वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं। हम दोनों इकट्ठे चलते हैं और वो ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ एंड इफ यू फील देर आर आंसर्स देन वॉक द पाथ। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि साहब ये सपना है और वापस एक सच्चाई है और फिर सपने के लिए कुछ महीनों बाद आएंगे, तो कोई बदलाव नहीं होगा। सो लास्टली, अगर हम ये समझ जाएं कि हम एक चैतन्य शक्ति हैं जो अपने, जो कि शरीर है, और आसपास में बदलाव ला रहा है, और शायद हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं है जिनके अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा है जिसने कि एक शरीर को धारण किया हुआ है, तो अगर वो फर्क अपने में महसूस करते हैं तो हर चीज जो है वो एक आत्मिक रूप में, आत्मिक स्वरूप में होगी। और फिर जिस रूप से हम चीजों को करते हैं, जो करते हैं वो नहीं बदलेगा, लेकिन जिस रूप में उसको करते हैं उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। Thank you very much for a very, very patient hearing.
ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवधेश शर्मा जी का. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रेस क्यों होता है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो आपने बताया. आपने सही कहा कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन जो क्लब का मॉर्निंग सत्र में होने वाला है तो वो भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो एक टेक्निक है जो सेल्फ को एम्पावर करता है. परिस्थितियां तो जड़ है, आत्मा चेतन है. जब परिस्थितियों का कंट्रोलर हम बन जाते हैं, मास्टर हम बनते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अपने आप को फिजिकली मेंटली एम्पावर करेंगे तो बातें सहज लगने लगेंगी. घटनाओं के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वह स्ट्रेस पैदा करता है. तो जब हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि एक ही घटना में कोई टूट जाता है और कोई सहज उस बात को पार कर लेता है. एक छोटी सी बात बोल के याद आई मेरे को कि एक बार एक लेडीज का हाथ का फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी पड़ोसन उससे मिलने के लिए आई कि भाई उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा. तो उसने जाके कहा कि बहुत बुरा हुआ जो आज तुम्हारा हाथ को फ्रैक्चर हो गया. तो उसने तुरंत कहा, नहीं जी, अच्छा हुआ, थोड़ा टाइम के लिए मुझे आराम मिल गया, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा. तो कहने का मतलब है कि घटनाएं तो घटते हैं, परंतु हमारा एटीट्यूड कैसा है उस पर हम स्ट्रेस को फील करते हैं. तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से रेमेडीज हमें बताई, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. अभी मैं बहनों का अनुरोध करूंगी कि आप ईश्वरीय सौगात देकर हमारे डॉक्टर साहब को सम्मान प्रदान करें. बहुत बहुत थैंक्स आपको भी. अभी नेक्स्ट सेशन आपका यही होने वाला है, तो एक मिनट हम साइलेंस में बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और अपने मन के संकल्पों को पॉजिटिव बना के अपने लाइफ के लिए गोल सेट करेंगे कि मुझे स्ट्रेस फ्री लिविंग या जीना है तो स्ट्रेस फ्री हिसाब से जीना है. ओम शांति.